hari jai gopi janavallabha giribardhari jai gopi janavallabha giribardhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banajari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Stotra Rishabh, His Divine Grace, Abhay Charanarvind, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Anant Koti Vaishnavrind Ki Jai, Namachara Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Sakho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivrind Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Jagannath Puri Ki Jai, Gangamai Jamunamai Ki Jai, Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jai, Kaliyuga Pavana Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakkadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Juta Padakamalan Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatte Deshatarine Vancha Kalpattaru Bhishcha Kripa Sindhubhye Vacha Tanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Namatte Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि जो महाभारत के प्रति जो अलग अलग टीकाएं है अलग अलग मत है लोगों का वो अलग अलग कारण के लिए है एक कवि अपने काव्यत्व को प्रकाशित करने हेतु जब ऋषि दर्शन में जो साधुओं के दर्शन में उसके विपरीत हो जाता है तो उसे उत्पात हो जाता है श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाते ही कल्पते वो किसकी बात कर रहे हैं भक्ति की बात कर रहे हैं अगर भक्ति करते समय शास्त्र को हम शास्त्र का आश्रय नहीं लेंगे तो ऐसे भक्ति में भी उत्पात आ जाता है यहां तो केवल मत प्रकट करने से कितना उत्पात हो सकता है लोगों में कितना जो कंफ्यूजन निर्माण हो सकता है इसलिए अगर हम भौतिक जो समाज है उसके जो नेतृत्व करने वाले इनको देखेंगे इनका सिद्धांत क्या है श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस भौतिक जगत में प्रायश सब लोग निष्पाप नहीं भी हो मुग्ध है मुग्ध होने के कारण पाप करते हैं ज्यादा करके लोग बहुत कम मात्रा में लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं लेकिन दुर्भाग्यवश सब कुछ उनके अधीन है जो मुग्ध है उनके अधीन में कुछ नहीं बल्कि जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनके पास सब शक्ति है और निष्पाप और मुग्ध लोग उनके अधीन हो गए हैं इसलिए जो वैदिक संस्कृति के शत्रु कौन है जो संघर्ष है जो सुर और असुर का संघर्ष ये केवल इतिहास में नहीं हुआ, ये अभी भी होता रहेगा, अभी भी है। तो वैदिक संस्कृति के जो शत्रु है वो है जो कम्युनिस्ट, जो नास्तिकवाद है ये है, फिर भौतिकवाद ये भी एक वैदिक संस्कृति के शत्रु है, आधुनिकवाद ये भी शत्रु है, और वैदिक संस्कृति का और एक शत्रु है फैनेटिज्म, धर्मांधता। मेरा ही मत सबसे महान है, एक एक होता है चर्चा, चर्चा सत्र में अलग अलग मत होना ये स्वीकार है, लेकिन मत जब चर्चा सत्र जब एक व्यासपीठ पर होता है और उसके बाहर आकर हम अगर उसको शारीरिक स्तर पर संघर्ष करने लगते हैं फिर वो धर्म नहीं है, न तो अखाड़ा भी है। अखाड़ा में कम से कम अखाड़ा में कुश्ती करते, ये क्या हो गया, ये गुंडागिरी हो गया। इसलिए एक तत्वज्ञानी कहते हैं अच्छे कारण के लिए बुरे कारण के लिए हिटलर बनना है बुराई है। वैदिक संस्कृति जब अपने मत का प्रचार करता है या करती है तो उस समय जबरदस्ती से नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया, बहुत लॉजिकली प्रेजेंट किया उसको, और उसके बाद कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, अब अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं समझे हो, मैं आपको फिर से सुनाने के लिए तैयार हूं। यथेच्छसी तथा करो। स्वतंत्रता जो जीव को देना है, अगर वो जीव गलत कारण के लिए भी अपने स्वतंत्रता को उपयोग करेगा, उसको स्वतंत्रता हमको देना चाहिए, उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हाथ में रस्सी लगाकर, पैर पे रस्सी लगाकर, गले में रस्सी लगाकर और उसके हाथ में माला दो, हरे कृष्ण जप करो, अगर वो हरे कृष्ण जप करेगा उसमें संतोष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र से उसको कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको जब तक वो खुद की इच्छा से भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि भक्ति ये क्या है, ये यांत्रिक नहीं है। अगर वो यांत्रिक होता तो हम कितने लोगों को भक्त बना सकते थे, ये यांत्रिक नहीं है, ये स्वयं की इच्छा से हमें करनी चाहिए। इसलिए ये भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वैदिक संस्कृति के महानता क्या है कि शास्त्र प्रदान करो, संस्कृति प्रदान करो और जीव को अवसर दो खुद उसको स्वीकार करने हेतु। इसलिए कभी कभी कठिन जाता है, क्योंकि चाहते हैं कि हम लोग सब भक्त बने, ये भगवान की भी इच्छा है, जबरदस्ती सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, हमसे ज्यादा भगवान कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, जीव को स्वतंत्रता देते। एक किसी ने प्रश्न पूछा हमारे एक सन्यासी को कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता क्यों दी है, तो राधानंद महाराज ने कहा देखो स्वतंत्रता इसलिए दिया है, कृष्ण ये रिस्क लेते हैं, धोखा लेते हैं स्वतंत्रता देने के लिए, जीव को देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम केवल अपनी इच्छा से हो सकती है, जबरदस्ती से नहीं हो सकती। अगर स्वतंत्रता नहीं है फिर वहां प्रेम नहीं है। तो इसलिए जो संघर्ष है वो किसके साथ में है, ये संघर्ष है, हम बहुत भयंकर शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन व्यासदेव जी महाभारत में बहुत प्रेम से, बहुत जोश से कहते हैं कि आप धर्म का पालन करो, धर्म को मत छोड़ो, धर्म प्रकाश है, और प्रकाश होने के नाते जैसे उदाहरण दिया जाता है, कितना भी बड़ा अंधेरा क्यों नहीं, अंधेरा क्यों ना हो, अगर एक कमरा है बहुत गहरा अंधेरा है, लेकिन एक लैंप लगाने से क्या हो जाता है, वो पूरा प्रकाशमान हो जाता है। अंधेरा बड़ा है, उसकी मात्री उसका मात्रा बड़ा है, लेकिन प्रकाश फिर भी अंधेरे को दूर कर सकता है, वैसे ही ज्ञान है। अज्ञान कितना भी महान और कितना भी लंबा क्यों न हो,
अनंत काल तक का भी अज्ञान हो, फिर भी जहां प्रकाश आ जाता है तुरंत परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए हमें वृत्ति देखनी चाहिए बार बार, किस वृत्ति से लोग इस प्रश्न को उठा रहे, किस वृत्ति से लोग अपने ग्रंथों को लिख रहे, किस वृत्ति से लोग इसको करना चाहते हैं। एक बार एक गांव में, छोटे से गांव में एक संत आए हुए थे, बहुत प्रसिद्ध थे। वो आए थे तो उनसे वहां का जो वर्तमान जो वार्ताहर जो रिपोर्टर होते, उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या संत आज वेश्याग्रह भेंट देने के लिए जा रहे? संत तो कहां भी जा सकते हैं उद्धार करने के लिए, कहां भी जाकर प्रवचन कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा तो इस संत ने पूछा, क्या इस गांव में वेश्याग्रह है? तो अगले दिन के वर्तमान पत्रक में ऐसा रिपोर्ट आया, द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय सेंट, क्या यहां वेश्याग्रह है? वो झूठ बोल रहा है क्या? झूठ नहीं बोल रहा है, वर्तमान पत्रक का जो जो वार्ताहर है वो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी वृत्ति देखो कि दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन रेज्ड कि क्या इस गांव में वेश्याग्रह है। अलग अलग दृष्टिकोण से उस प्रश्न को आप पूछ सकते हो। संत का दृष्टिकोण क्या था? अनुकंपा, दया, भय कि यानी कि इतने छोटे गांव में भी ऐसा चलता है, ऐसा प्रश्न था। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कुछ अक्षरों को पढ़ते हैं, वहां भाव दिखाई नहीं देता, भाव बताने वाले होने चाहिए। जैसे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इस किताब में जब श्रील प्रभुपाद जी बॉब कोहेन से बात कर रहे हैं और बात करते करते बीच में पॉज करके आता है, आपने पढ़ा होगा पॉज, पॉज लगा विराम नहीं, पॉज यानी कि वहां कुछ चर्चा नहीं चल रही है, विराम पॉज। तो पॉज क्या है? कुछ नहीं है हमारे दृष्टिकोण से। जब बॉब कोहेन ब्रह्मतीर्थ प्रभु हमारे मंदिर में आए थे, उन्होंने बताया जो पॉज था ना, आपने पढ़ा होगा जहां पॉज है वहां मैं शरणागति के बारे में सोच रहा था, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो पढ़ रहा हो उसको लगेगा अरे ये क्यों डाला है पॉज इधर, लेकिन उस पॉज में क्या है, उस पॉज में वो सोच रहे थे कि अब मुझे प्रभुपाद जी के आश्रय को ग्रहण करना चाहिए, यानी कि सारे प्रश्नों का और सारे उत्तर का जो निष्कर्ष है उस पॉज में है। उस पॉज में कोई भावना लिखा नहीं है, लेकिन किसको पूछना है? जो उस अनुभव से गए हुए हैं, उनको पूछने से समझ में आ जाएगा किस भावना से बता रहे हैं कि मैं शरणागत बनना चाहता था। और कैसे भौतिकवादी लोग इसको समझ पाएंगे? समझ नहीं पाएंगे। काल्पनिक कवि लोग इसको कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए महाभारत में, और एक उदाहरण, हम परमात्मा की बात करते हैं कि परमात्मा हर एक के हृदय में निवास करते हैं, इसको अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। परमात्मा हर एक हृदय में निवास करते हैं, भर्ता, प्रभु, साक्षी, सुहृद, शरणम, साक्षी। साक्षी यानी कि एक दृष्टिकोण से ऐसा देख सकते हो, जिस समय केजीबी का राज्य था रशिया में कम्युनिस्ट लोगों का, वो हर एक व्यक्ति के पीछे अपना समाचार रखते थे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लाखों केजीबी एजेंट्स थे। यहां तक कि वो लोग बाथरूम में, टॉयलेट में जब लोग विष्टा मल त्याग करते थे उस समय भी उनके पीछे गुप्तहार रखते थे, यानी कि उनका जो जो नेटवर्किंग था लोगों के बारे में समझने के लिए इतना भयंकर था, किसी को भी स्वतंत्रता नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि परमात्मा ऐसे ही है, कंट्रोलिंग, देखो कितना है, सब जगह में निवास कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे हार्ट में, हम जो भी करेंगे उसको देखते, एक दृष्टिकोण हो गया। ये नास्तिक का दृष्टिकोण हो गया। लेकिन भक्त का दृष्टिकोण क्या है? भक्त का दृष्टिकोण यह है कि परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को वितरित कर लेते हैं सबके हृदय में, वो दान दे रहे अपने आप को सबके हृदय में। मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको मैं मदद करूंगा। एक साधारण कीट भी क्यों ना हो, उसके हृदय में भी निवास करते हैं। जिस योनि में हम जाएंगे उस योनि में भगवान परमात्मा के रूप में जाते हैं, मॉनिटर करने के लिए नहीं। वो कोई पुलिस नहीं, ट्रैफिक पुलिस। जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, अगर आप कितने साल से गाड़ी चलाते हो, अपना स्कूटर चलाते हो, अपना कार चलाते हो, 25 साल से चलाते होंगे और एक बार भी आपने कुछ गलत नहीं किया हो, वो उसका रिकॉर्ड नहीं रखता, आपको नहीं बुलाएगा इधर आ। 25 साल से आप इतने अच्छा से गाड़ी चला रहे हो तो हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आपको कुछ भेंट देना चाहते, ऐसा कभी नहीं होता। वो किसके लिए खड़ा है? जब 26वें साल के पहले ही दिन अगर आपने गलती कर ली तो आपको क्या करेंगे? वो दंड देंगे। परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा इस दृष्टिकोण से हमारे हृदय में निवास नहीं करते। इसलिए यहां इस महाभारत में आज हम चर्चा करेंगे कि व्यासदेव का जन्म, धृतराष्ट्र पांडु का जन्म, और अगर समय मिले तो कुंती ने किस प्रकार से कर्ण के प्रति अन्याय किया उसको त्याग करके, इसकी चर्चा करेंगे। व्यासदेव जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे, किया है, उसमें ऐसा नहीं कि जो उनके लिए अनुकूल है केवल उन कथाओं को लिखे हैं, और जो प्रतिकूल है ऐसे कथाओं को उन्होंने क्या कर दिया, लिखा ही नहीं, और दूसरे किसी ने रिसर्च किया। जैसे कोई वर्तमान पत्रक होते हैं, किसी के यहां चले जाते और रिसर्च करते हैं, देखो ये असली कहानी है, हमारे पास असली कहानी मिला हुआ है, हम इसको प्रकट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी समाचार, जो भी कथाएं, जो भी महाभारत में है, वो सब कुछ व्यासदेव से ही आया हुआ है। अगर वो शिवाजी सावंत का कादंबरी हो, मृत्युंजय, या कोई दक्षिण भारत में जो तुरंग भारत ने लिखा है, या व्यास भारत, कुमार व्यास का भारत है, या गुजरात का भारत है, ऐसे जितने भी महाभारत है उन सब में जो भी कैरेक्टर है, कर्ण कैरेक्टर हो, कुंती हो, अर्जुन हो, कृष्ण हो, ये इन्होंने बनाए नहीं है, इनको बनाने की शक्ति नहीं है, इसको बना नहीं पाएंगे। अगर आपने ऐसा भी सोच लिया सब मिथ्या है, लेकिन देखो कल्पना शक्ति कितनी महान है। उस दृष्टिकोण से भी महाभारत एक मनोरंजन देने के दृष्टिकोण से अगर ऐसा भी लेकर हम प्रयास करेंगे तो ऐसा कादंबरी आज तक किसी ने नहीं लिखा है। इतने सारे कैरेक्टर सोचो एक बुक में, हु इज हु इन महाभारत करके ग्रंथ है, वो ग्रंथ एक बड़ा ग्रंथ है, हु इज हु, केवल इतना ही लिखा है। शाल्य कौन है, एक दो लाइन, कुंती कौन है, एक दो लाइन, यानी एक इतना 150-200 पेज का ग्रंथ है। ऐसा कौन कादंबरी लिख सकता है जिसमें इतने सारे कैरेक्टर आ सकते हैं? ये संभव नहीं है। एक किताब में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 25-50-100, इतने सारे कैरेक्टर व्यासदेव, और उनके पास ऐसा नहीं कि कोई माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर था, वो लिख के रखा था उन्होंने, न तो प्रिंटिंग प्रिंटेड पेपर था, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, उनके सेक्रेटरीज थे बहुत सारे मदद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। अगर कल्पना भी कहोगे, देखो क्या कल्पना है, लाखों कैरेक्टर उस ग्रंथ में है, और उनके बारे में चरित्र लिखना, उनके कहानियों को बनाना, कितना कल्पना कर सकते हो आप? ये संभव नहीं है। यानी कि एक कल्पना भी एक महान सत्य ही है। इसलिए हमें देखना चाहिए, जैसे महाभारत में शकुंतला की कहानी आती है। अब इस शकुंतला की जो कहानी क्यों व्यासदेव जी सुना रहे, और इसी कहानी को लेकर हमारे भोज कवि ने कालिदास ने शकुंतला नाटक बनाया और उनकी जो भाषा है बहुत सुंदर भाषा है। दुर्भाग्यवश हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो संस्कृत को पढ़ते हैं निष्णात है, जो कवि का जो जो प्रतिभा है उसको वहां देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती है ऐसे महान कवियों से भी। जैसे यहां शकुंतला के नाटक में व्यासदेव जी इसको लाते हैं, गोमूत्र का न्याय में आता है शकुंतला का नाटक। जब शकुंतला का विवाह हो गया दुष्यंत के साथ, वो गंधर्व के रूप में विवाह हुआ, फिर दुष्यंत चले गए अपने राज्य पे और उन्होंने कहा आप बाद में आ जाना। शकुंतला ने अपने पिता को कहा कि मैं दुष्यंत महाराज के साथ विवाह हो गया मेरा, फिर मैं काफी साल के बाद चली जाती है वहां। और जब वो आ जाती है वहां, तब राजा दुष्यंत कहते कि मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कौन हो? ऐसे कोई आ गई कहती कि मैं आपकी पत्नी हूं तो सब लोग आ जाएंगे, मैं राजा हूं, कोई भी आ गया रस्ते वाले और कहेगी मैं आपकी पत्नी हूं तो मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? इसके लिए क्या साक्ष्य है, क्या पुरावा है कि आप मेरी पत्नी हो? तो डांटते उसको। अब अपने क्या उसका ना, कालिदास के काव्य में क्या लिखा है, ये कहानी ऐसी है कि उसका जो रिंग था वेडिंग रिंग भूल गया था, किसी मछली ने खा लिया और वो साक्षी था कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत महाराज के साथ में हुआ है। ये कहानी महाभारत में नहीं है, ये कालिदास ने अपने मन से वहां डाला है, परंतु कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय भूल गए, वो रिंग को देखते रहे, रिंग ही नहीं है। उसको आने के बाद समझ में आता है कि रिंग नहीं है, बहुत बहुत कठिन दशा हो जाती है उसकी। लेकिन महाभारत में जब व्यासदेव जी इस कथा को लिखते हैं, वो कहते कि देखो दुष्यंत महाराज का क्या साक्षी है, ना साक्षी कुछ नहीं है। फिर वो उसको याद कराती है क्योंकि जब उनका विवाह हो रहा था दुष्यंत और शकुंतला का, शकुंतला ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे पिताश्री है, उनके अनुमति के बिना मैं विवाह नहीं कर सकती। तब शकुंतला को दुष्यंत महाराज कहते हैं कि आप अपने हृदय में पूछो, आपके हार्ट में पूछो, पिताजी को पूछो बाद में, लेकिन अब अपने हृदय को पूछो, क्या आप मुझे पसंद करती हो? क्या आप झूठ बोल सकती है? ऐसा परमात्मा के विरुद्ध आप झूठ बोल सकते हो क्या? फिर अब प्रामाणिक होने के कारण उसको भी दुष्यंत के प्रति आकर्षण हुआ था, वो नहीं नहीं बोल सकी, बोले हां मेरा आपके प्रति आकर्षण है। ये हो गया प्रामाणिकता, उसलिए उसका विवाह हो गया और कण्व महर्षि ने उस विवाह को सम्मति दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो जो पति को चुन लिया था वो अधिकृत थे और साथ साथ एक क्षत्रिय परिवार के थे, उसके लिए अनुकूल थे। तब दुष्यंत को शकुंतला कहते कि देखो जैसे आपने मुझे प्रश्न पूछा था, मैं आपको कहते कि आप साक्षी मुझे पूछ रहे हो, आप अपने परमात्मा को पूछो हृदय में जो निवास कर रहे हैं, वही आपके लिए साक्षी, वही मेरे लिए साक्षी है। तो यहां व्यासदेव जी एक कोई ऐसा ही रोमांटिक ड्रामा प्रेजेंट नहीं कर रहे, उनका इस नाटक लिखने का उद्देश्य क्या है कि परमात्मा निवास करते हैं, आप उनको भूलकर कुछ कार्य नहीं कर सकते हो। जब ऐसा प्रश्न शकुंतला ने उठाया दुष्यंत के प्रति कि उनको पूछो आप प्रश्न, तो दुष्यंत डर गए और उसी समय शकुंतला उनकी भर्त्सना करती है, उनको ताड़ना देती है और वो निकलने लगते। तब आकाशवाणी हो गई, अरे नहीं दुष्यंत महाराज आपको ऐसा नहीं करना है, शकुंतला आपकी पत्नी है, उसको स्वीकार करो। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा देखो मैं जानता था कि मैं आप मेरी पत्नी हो, लेकिन राजा होने के नाते हमारा गंधर्व विवाह हुआ था, अगर मैं आपको ऐसा ही स्वीकार कर लेता तो लोग सोचते क्या कि दुष्यंत महाराज कितना मिथ्याचारी है, कितना स्त्री कामुख है, इसलिए मुझे एक ऊपर से अधिकारियों से कुछ सुनना था। अधिकारी लोग कहेंगे कि शकुंतला आपकी पत्नी है तो मैं आपको स्वीकार करने वाला था। देखो यहां कालिदास के दृष्टिकोण से एक कहानी उसके काव्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें एक्साइटमेंट, सस्पेंस, विरह, करुणा, इन सब रसों को जागृत कर सकता है, यह ठीक है। लेकिन परमात्मा को जागृत नहीं करोगे तब क्या हो गया, वो फिर वो मंडेन पोएट बन जाता है, एक भौतिक काव्य बन जाता है। इसलिए व्यासदेव जी जो कुछ भी कर रहे हैं, हाँ बराबर है कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति जितना होनी चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसलिए व्यासदेव जी को नारद मुनि ने डांटा। सोचो महाभारत बनाने के बाद जो कृष्ण की ही महिमा है, पांडवों की महिमा है, फिर भी गाली खा रहे। तो अगर ऐसे लोग जिन्होंने अपने महाभारत को बनाया है, जो समाज के लिए भार है, अगर ऐसे लोग नारद मुनि के सामने आ गए तो क्या हो जाएगा। अगर व्यासदेव जी डांट खा रहे, व्यासदेव जी को डांट मिल रही है, तो अगर ये लोग सामने आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनको सबको पेड़ बना देंगे नारद मुनि, जैसे नलकुवर और मणिगुरु को बना दिया था, बन जाओ पेड़। और वो भी कृष्ण के वृंदावन में नहीं, वीरप्पन के जंगल में जा, उधर बन जाओ और हमेशा के लिए पेड़ बनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि है वो भ्रष्ट बुद्धि है। अगर व्यासदेव जी, ये सोचना चाहिए, व्यासदेव जी अगर डांट खा रहे हैं महाभारत बनाने के लिए नहीं, बल्कि वहां कृष्ण को हमेशा के लिए केंद्र बिंदु नहीं रखा है अपने, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। इसलिए जितने भी मत किसी ने भी प्रकट किया है लूजली प्रेजेंट करते हैं। जैसे व्यासदेव जी की जो कहानी आती है वो कैसे आती है कि व्यासदेव वॉज प्रोक्रिएटेड बाय इलिसिट रिलेशनशिप, अनैतिक संबंध के द्वारा व्यासदेव जी का जन्म हो गया। पराशर मुनि जी मुनि होने पर भी, ये और एक लक्षण है भारत में कि साधुओं के जीवन में कुछ कमतियां आ गई, उनके हाथ में कुछ गलती हो गई, उसको बार बार जितना दिन हो सके उतना दिन तक लिखते रहना, उसको बार बार लिखते रहना, ताकि लोगों का जो विश्वास है जो साधु वृत्ति से दूर करना, और कहना कि इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो समाज में हर चीज की आवश्यकता होती है, राजकारणी लोग हम जानते हैं, फिर भी ऐसा नहीं कि हम उनको ठुकरा देते, हम सोचते रहते एक ना एक अच्छा बंदा कोई आ जाएगा समाज के लिए, समाज का कुछ भलाई करेगा। अगर एक 100 रुपए का नोट या 1000 रुपए का नोट नकली है, ऐसा नहीं कि सब नोटों के प्रति आप दोष रखो, नोट ही सब खराब है, नोट ही बेकार है, सब 1000 रुपए नोट को जला दो, ऐसा नहीं करते। वैसे समाज में, भौतिक समाज में नैतिक मूल्यों को बना के रखना एक ऐसा है कि समुद्र के जो लहर है या नदी के जो वेग है उसके विपरीत तैरने के समान है। अगर कोई प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में कुछ लोग गिर भी जाएंगे, उनके प्रति सांत्वना दिखाना चाहिए। अगर युद्ध करते करते काफी सैनिक लोग मारे जाते हैं, क्योंकि मारे जाते इसका अर्थ नहीं कि सैनिक नहीं बनना है। अगर देखा कह रहे सैनिक बनने से मरण निश्चित है तो क्यों सैनिक बनो। अगर सैनिक नहीं रहेंगे तो अब कितना भी अच्छा घर बनाओ, कितना भी सिक्योरिटी रखो, कैसी प्रकार का भी कैमराज रखो, क्योंकि आपके देश के बॉर्डर रक्षित नहीं तो आपका घर क्या रक्षित रहेगा, कौन उसकी रक्षा करेगा। यानी कि बार बार सैनिक गिर जाएंगे, सैनिक मर जाएंगे, कभी कभी सैन्य परास्त भी हो जाएगा, फिर भी समाज और देश क्या करेगा, नहीं ये तो आवश्यक है, इसको करना ही है, इसको रखना ही, इसको बनाना ही है। वैसे ही साधु की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, उसको बनाना ही है, उसकी निंदा नहीं करनी है। कभी कभी भक्त लोग भी निंदा करने लगते हैं, अरे वो तो अनधिकृत है, वो तो क्या गिरता ही है। हम लोग आनंद नहीं लेना चाहिए, अनुकंपा दिखानी चाहिए। खास करके भारत के न्यूज़पेपर्स है, खास करके इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आप इनके इतिहासों को पढ़ोगे, एक इनके अधीन है, ये कम्युनिस्ट लोगों के अधीन में है, मिशनरी लोगों के अधीन में है, मटेरियलिस्ट लोगों के अधीन में है, इसलिए इन वर्तमान पत्रकों में आप कम से कम एज लिटिल एज पॉसिबल धर्म के बारे में आप पढ़ोगे, ज्यादा अधर्म के बारे में ही आएगा, ज्यादा धर्म के बारे में नहीं आएगा, अधर्म के बारे में ही आएगा। क्यों? क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा, राक्षसी वृत्ति की संख्या कम है लेकिन वो अधिकार में है, और मुग्ध लोग अज्ञान के कारण पापी है, बदल सकते, उनको परिवर्तन कर सकते, उनको हम धर्म के मार्ग पर लेकर आ सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे धर्म का मार्ग में आने के लिए, हम भी वैसे अज्ञानी थे। ये कैसे संभव है? क्योंकि 90 प्रायश सबके सब लोग धर्म में आ सकते हैं, अगर मीडिया, वर्तमान पत्रक, टेलीविजन, रेडियो भक्तों के हाथ में मिल जाए, तब क्या होगा? केवल हरि कथा होगी, महाभारत की कथा होगी, रामायण की कथा होगी। देखो, जब रामायण चल रहा था, महाभारत चल रहा था, काफी कम समय के लिए चला, लेकिन उसका प्रभाव कितना हो गया, कितना प्रभाव हो गया। लेकिन अब रामायण और महाभारत के विरुद्ध कुछ लिखते हैं, वो चल रहा है, इसलिए लोग उसको देखते हैं और उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता। तो इसलिए जब व्यासदेव जी का जन्म हुआ, अगर आप देखोगे पूर्व पक्ष क्या है कि इसमें पाप ही था, पाप के द्वारा जन्म हो गया। अगर आप जन्म के दृष्टिकोण से देखो, ये संस्कृति के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जन्म को महत्व नहीं दिया गया है, उसके कर्म को देखो। कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। इसके लिए संस्कृत जाने की आवश्यकता नहीं है। गुण यानी कि उसके गुणों के द्वारा, कर्म उसके कर्मों के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अगर व्यासदेव जी का ऐसा हो भी जाए कि उनके माता पिता के गलती के कारण, अगर ऐसा भी सोच लो, ऐसा जन्म हुआ है, उनकी निंदा करना ये न्यायुक्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। जैसे सत्यकाम जबला ऋषि के बारे में, जब वो गौतम ऋषि के पास आ गए पढ़ाई करने के लिए, तब गौतम ऋषि ने पूछा, आपका परिवार गोत्र क्या है? गोत्र पूछना ये महत्वपूर्ण है, पूछते हैं गोत्र। आजकल तो लोग कहेंगे हम सब बंदर से आए हुए हैं। जैसे एक डिवोटी कह रहे थे, बहुत सारे साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय लोग वैज्ञानिक बन गए, वो अमेरिका जाते हैं, फिर डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं और चर्चा भी करते, पेपर्स लिखते, कैसे हम लोग कैसे आए हैं, बंदरों से आए हुए। लेकिन जब दक्षिण भारत में कभी कभी आते हैं तो माता पिता उनको मंदिर ले जाते हैं, रंगनाथ मंदिर, तिरुपति मंदिर, उधर जाते हैं, अगर कुछ अर्चना कर रहे हो, प्रश्न पूछते हैं, कौन सा गोत्र है? बंदर गोत्र नहीं कहते लोग, वो कहेंगे अपने गोत्र की चर्चा करेंगे, ये विरोधाभास हो गया। आप पेपर लिख रहे हो कि हम लोग सब बंदर से आए हुए हैं, लेकिन जब अर्चक के सामने खड़े हो जाते हो, सोचते नहीं, तुरंत क्या कहते हो कि भरद्वाज गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, ये गोत्र है, गोरिल्ला गोत्र नहीं कहते, या शिंपांजी गोत्र नहीं कहते, वो सीधा अपना गोत्र कहते हैं। गोत्र से संबंधित रहना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से संस्कार मिलते हैं। लेकिन ऐसे संस्कार न मिलने पर भी अच्छा संग के कारण अगर कोई परिवर्तित हो जाता है, फिर उसकी निंदा करना ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है, न्यायुक्त नहीं है। प्रभुपद जी वो कहानी सुनाते थे, जो एक गांव का छोटा सा बालक अपने स्वयं के प्रयास से एक बहुत बड़ा जज बन गया। वो जब जज बन गया तो एक दूसरे उसी गांव का व्यक्ति बूढ़ा वो गया था, उसने देखा तो आकर अपने गांव के और एक वृद्ध व्यक्ति को कहने लगा, आपने सुना है क्या? बोला क्या है? गांव में सबसे ज्यादा प्रजल्प होता है क्योंकि बहुत समय है, इसलिए महापुरुष कभी नहीं कहते कि सिटी टॉक, कहते विलेज टॉक, ग्राम्य कथा, क्योंकि ग्राम में, क्योंकि सिटी में चर्चा करने के लिए समय की थे, श्वास लेने के लिए समय नहीं। बंबई के लोकल ट्रेन में उनको श्वास भी नहीं ले सकते, चर्चा करने के लिए समय नहीं होता, काम करना पड़ता है, लेकिन गांव में बैठकर सबके सब प्रधानमंत्री बन जाते हैं और दिन भर चर्चा करते रहते हैं, ऐसा उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। तो इस प्रकार से ग्राम्य कथा केवल गांव में ही होता है। तो ये आ गया और सब नकारात्मक, दूसरों की निंदा करते रहना, शाप देते रहना। सोचो अगर इनको सही में शाप काम करता तो क्या हालत हो जाता। तो बैठकर चर्चा कर रहे कि सोच रहे कि अरे वो जज बन गया, तो दूसरे ने कहा यह संभव नहीं है, अरे मैंने स्वयं देखा उसको, उसको मैंने स्वयं देखा जज बनकर बैठा हुआ है और निर्णय दे रहा है। तो उसने कहा, उसका अर्थ है कि उसको पगार नहीं मिलता होगा। देखो प्रभुपाद जी कहते, देखो इनकी बुद्धि कैसी है, किसी न किसी प्रकार से उसमें दोष देखना ही, कुछ भी हो जाए ये संभव नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यासदेव जी का अगर माता पिता में गलती थी फिर भी उनको क्यों, अरे उनके कार्यों को देखो, उनके गुणों को देखो। ऐसा होने पर भी, अगर आप ऐसा समझना चाहते हो, ऐसा होने पर भी उन्होंने क्या नहीं किया। सत्यकाम जबला जब ऋषि के पास आए, उनको पूछा कौन सा गोत्र है, उन्होंने कहा मैं जाकर मां को पूछ कर आता हूं। वो जाकर अपने मां को पूछता है और मां कहती कि देखो आपके घर में बहुत सारे लोग आते, वो वेश्या थी, मैं जानती नहीं कि किस पिता के द्वारा आप प्राप्त हुए हो। वो जाते और कहते कि हाँ मैं जानता नहीं कि मेरे पिता कौन है, हाँ मेरी मां ऐसी है। तो उसने कहा सत्यकाम तुम ब्राह्मण हो, ये अपने वेदों में आता है, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपको स्वीकार करता हूं पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। यानी कि वेश्या का पुत्र होने पर भी वो ब्राह्मण के रूप में ऋषि लोगों ने स्वीकार किया। तो आजकल का जो कहता है देखो तुम्हारे शास्त्र सब ब्राह्मण प्रेषित है, ब्राह्मण से उनके प्रयोजन के लिए, इसलिए मनु संहिता को जला दो, महाभारत को जला दो, ये कर दो वो कर दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत लोगों ने इसका प्रचार किया है। तो फिर व्यासदेव जी क्या असली में ऐसा हुआ था? हमने कह दिया अगर हुआ भी हो, इधर ही हम इसको समाप्त कर सकते हैं व्यासदेव जी के चरित्र के बारे में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो। जैसे हम कल कह रहे थे, अगर कोई भी ज्ञान आप चाहते, अगर भाषा भी बोलनी है, वो मराठी हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, या कोई भी भाषा हो, इंग्लिश भी हो, लैटिन भी हो, उसका मूल कौन सा है? संस्कृत है। संस्कृत मूल होने के कारण सारे ग्रंथों को, पहले सारे स्मृति शास्त्र थे उसको, पहले सारे श्रुति शास्त्र थे उसको स्मृति में परिवर्तन करने वाले कौन है? व्यासदेव जी है। हर एक शब्द को हिस्टोरिकली जो एटमोलॉजिकल कहते हैं, उसका जो रूट मीनिंग, वो कहां से आया हुआ है? अगर राजकारणी, नास्तिक राजकारणी अगर लेक्चर भी देता हो, वो अपने आप को क्या कहा, व्यासपीठ और बस ले ले, व्यासपीठ और बस ले ले, तो व्यासपीठ और बस्तों का इज ही क्वालिफाइड टू सिट ऑन व्यासपीठ, परंतु शब्द वही उपयोग किया जाता है। या ऐसा वेदी के, वेदी जो वेदी पर विराजमान है, वेदी किसके लिए कहा जाता है? यज्ञ के लिए। लेकिन लेकिन अक्वायर्ड मीनिंग देखो कैसा आया है। अगर आप नास्तिक धर्म का भी पालन करते हो या वैदिक धर्म का भी पालन करते हो, बोलने के लिए भी व्यास चाहिए हमको। व्यास, अगर व्यास जी नहीं है हम बोल भी नहीं सकते, वी कैन नॉट इवन स्पीक, कोई नहीं बोल सकता। यानी कि इतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, आयुर्वेद, जितने भी वेद है, उपवेद जो मुख्य वेद है, सब व्यासदेव जी से आया हुआ है, फिर उनकी निंदा करना एक कितना बड़ा अपराध है, व्हाट अ बिग ऑफेंस। और इसको हम करते रहते नियमित रूप से। जैसे हम लोग भारतीय लोग, खास करके महाराष्ट्र में गणपति की पूजा होती है, गणपति कोई हमारे मनोरंजन के लिए नहीं। अगर मनोरंजन चाहिए तो जाओ नौटंकी देखो, तमाशा देखो, गणपति के साथ तमाशा मत करो, ये नास्तिकवाद है। इससे अच्छा आप नास्तिक बन जाओ, लेकिन ऐसा आस्तिक मत बनाओ जो अपने कल्पना के साथ गणपति को क्या नहीं करते। रोड रोलर, एक गांव में रास्ता खराब हो गया था तो गणपति को रोड रोलर बना दिया, और गणपति को क्रिकेटर बना दिया, गणपति को फिल्म हीरो भी बना दिया, उसके उसको चश्मा गॉगल पहनाकर। यानी कि जो कल्पना है ये समाज को क्या कर देता है, उत्पात कर देता है। अगर हमारे ऋषि मुनिगण और ऋषि राजर्षि लोग होते तो ऐसे अपराधी के, ऐसे अपराध के कारण सब गणेश फेस्टिवल को बंद कर देते। एक्चुअली बंद हो जाना चाहिए सब कुछ। क्यों? इससे भक्ति नहीं हो रही है लेकिन अपराध हो रहा है। और इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं इसमें कभी भाग नहीं लेंगे, वो सोचेंगे सब गलत है, न तो मुझे इसमें भाग लेना है, न तो धर्म से मुझे कुछ लेना देना है, वो नास्तिक बन जाते। नास्तिक इनको कौन बना रहा है? जिनके जिनके पास थोड़ा सा कोई आस्तिकता है, लेकिन वो आस्तिकता को कोई मार्ग नहीं है। सब कुछ अधिकृत होना चाहिए। तो इसलिए जब व्यासदेव जी का जन्म हुआ, पराशर महर्षि जो वशिष्ठ महर्षि के पोते थे, उन्होंने तपस्या की थी। ये मध्वाचार्य जी अपने तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपका ही एक अंश है। इसलिए भागवत में और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यासदेव जी शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार केवल भगवान विष्णु ही जब अवतार के रूप में आते हैं, और वही केवल शास्त्र की रचना कर सकते हैं, साधारण आदमी नहीं कर सकेगा। एक श्लोक के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक भागवत का श्लोक है उसको एक महीना तक प्रवचन कर रहे थे। ये उनकी महानता है, और ये व्यासदेव जी की महानता है कि एक श्लोक में इतना सारा ज्ञान ओतप्रोत करके रखा है एक श्लोक के ऊपर। मध्वाचार्य ने महाभारत और विष्णु सहस्रनाम हर एक शब्द के ऊपर, विष्णु सहस्रनाम के हर एक शब्द के ऊपर हजार अर्थ निकाला है, 1000 मीनिंग। सोचो एक शब्द लेकर उसको हजार प्रकार से, जो हरि भक्ति के लिए अनुकूल है वैसा अर्थ निकाला है। क्योंकि एक शब्द का इतने सारे अर्थ हो सकते हैं, एक श्लोक का कितना अर्थ हो सकता है, और एक ग्रंथ का कितना अर्थ हो सकता है। और मैंने एक बार पढ़ लिया जो भी इंग्लिश में, उसका कोई लेना देना नहीं संस्कृत से, और लिखा किसने, जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, व्यासदेव से कोई लेना देना नहीं है, उसने कुछ भी लिख दिया, और उसको लेकर अगर हम उसको अधिकृत समझेंगे हमारे से अपराध हो जाता है। इसलिए पराशर मुनि जब वो नदी को पार करना चाहते थे, सत्यवती, इसका भी जन्म बहुत विचित्र था। वो परिचय करके जो राजा थे वानप्रस्थ जीवन में थे, उनको स्वर्ग की कामना हो गई, उसके द्वारा वीर्य पतन हो गया, वो वीर्य किसी मछली ने खा लिया, उसके द्वारा मत्स्यराज विराट नरेश का जन्म हुआ और सत्यवती का जन्म हुआ। सत्यवती को एक मछली मार ने बड़ा किया, और ये मछली मार एक नाव रखे हुए थे, नाव पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक सेवा करने के लिए, लोगों को यहां से वहां ले जाओ। साधुगण आते रहते थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो उनको ले जाने के लिए वो अपने ही पुत्री को वो सेवा में लगाया था, वो सेवा कर रही थी। उस समय पराशर महर्षि आ गए, और पराशर महर्षि ने कहा कि मुझे ओ पल्ली पार जाना है। उन्होंने उनको अपने नाव पे बिठाया, नाव पे बिठाते ही पराशर मुनि के मन में इस बालिका के प्रति आकर्षण आ गया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे समागम करना चाहता हूं, आपसे पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं। उन्होंने रोमांस की बात नहीं की, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो हम हमेशा के लिए विहार करेंगे। उनने सीधा कह दिया कि मैं आपसे पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं, एक है ये भी कहानी है। और दूसरा व्यास पराशर महर्षि ने कहा कि मैं आपके शरीर का जो गंदगी है उसको मैं निकाल सकता हूं। तो सत्यवती कहने लगी मैं कैसे कर सकती हूं। फिर से उन्होंने वही कहा मैं पिता के आदीन हूं और ऐसे अगर मैं करूंगी तब मेरा चारित्र को कलंक आ जाएगा, ये असंभव है, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूं। तो पराशर महर्षि कहते हैं कि आपके चारित्र को कोई कलंक नहीं लगेगा जब तक भौतिक कलयुग में जो मॉडर्न लोग नहीं आएंगे तब तक कलंक नहीं लगेगा, उसका देखभाल मैं कर लूंगा। कि आपका जो कन्यत्व है, जो वर्जिनिटी है, वो वैसे का वैसे रह जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। और आपका जो पुत्र हो वो इतना महान बनेगा, यानी कि यहां पराशर केवल समागम की बात नहीं कर रहे, अगर ये साधारण अनैतिक संबंध होता तो इसमें एक तो इस कहानी को बताने की भी इच्छा नहीं करते थे, इसको छिपा के रखते थे और कहां से तो समझ में आता था। व्यासदेव जी स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखते समय महाभारत के आदि पर्व में खुद लिख रहे हैं प्रामाणिकता के साथ, ऐसा नहीं कि वो बेशरम है, नहीं प्रामाणिक है परंतु बेशरम नहीं है, धर्म के बारे में जानते भी है। तो इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, पराशर मुनि ने क्या क्या आश्वासन दिया, और कन्यत्व को बोले कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको कलंक नहीं लगेगा, आपको दोष नहीं लगेगा, ये मेरा जवाब, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ऐसे ही हो गया, केवल व्यासदेव जी का जन्म नहीं हुआ बल्कि मत्स्यगंधा नाम की जो स्त्री थी उसका दुर्गंध निकल गया, वो सत्यवती बन गई, वो गर्भवती हो गई, व्यासदेव जी को जन्म दिया। जन्म देते ही व्यासदेव जी बड़े हो गए, गए तपस्या करने के लिए। अगर अनैतिक संबंध से ऐसा पुत्र होता ये बहुत कठिन है, ये दिव्यत्व, उसमें दिव्यत्व है। तो भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, दिव्यत्व को निकालकर केवल जो मनुष्यत्व को जब प्रकट करेंगे तो यहां दोष दिखाई देता है। हमें पूरी कहानी एज इट इज बोलनी चाहिए। पराशर मुनि ने समागम के लिए अपेक्षा की, कन्यत्व की रक्षा की उन्होंने आश्वासन दिया, उसका दुर्गंध निकालने का आश्वासन दिया, ऐसा पुत्र होगा उसका भी आश्वासन दिया। अगर आप पढ़ोगे केवल एक ही कहानी आपको सुनाई मिले, सुनने को मिलेगी, वो कौन सी है, इलिसिट रिलेशनशिप, बाकी सब आपको सुनाई नहीं मिलेगा। हो गया ना इसमें गलती, जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका भी जन्म ऐसे हुआ, विवाह के पहले मेरी किसी देवदूत के साथ समागम हो गया और आकाशवाणी हो गया, अरे इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा एक सन ऑफ मैन, ये भगवान नहीं है, भगवान के दास है, अगर इनके जन्म में कोई कुछ कहता नहीं है तो व्यासदेव के बारे में क्यों कहना है, वो तो भगवान है स्वयं, वो कहां से भी आ सकते हैं, वो ब्रह्मा जी के नाक से भी आ सकते हैं, देवकी के गर्भ से भी आ सकते हैं, और वो इससे भी आ सकते हैं, खंभे से भी आ सकते हैं। तो जहां से आते हैं वो उनको दोषी नहीं कर सकता, लेकिन जहां से आया है उसको शुद्ध कर सकते हैं। व्यासदेव जी ने सत्यवती को शुद्ध कर दिया क्योंकि वो भगवान के अवतार है। इसीलिए हर एक धर्म में या हर एक सिचुएशन में, खास करके कलयुग में धर्म लोप होता जाता है, लेकिन धर्म को लोप न होना चाहिए ऐसा भी धर्म शास्त्रकारों ने बना के रखा हुआ है। अब इसकी कहानी है, व्यासदेव का जन्म हो गया, चले गए धर्मशास्त्र रचना करने लगे, और उसके बाद पराशर मुनि जो निकले वहां से वो फिर से वापस कभी सत्यवती को मिलने के लिए नहीं आए। न तो सत्यवती ने कहा मेरे प्रति धोखा हो गया, न तो कोर्ट के पास चली गई, किसी लॉयर के पास, किसी डॉक्टर के पास चली गई, पराशर मुनि ने क्या किया, मेरे साथ धोखा कर दिया। ऐसा किधर दिखाई देता है? कहा भी नहीं दिखा देता। बल्कि वहां वहां लिखा है, व्यासदेव जी लिखते हैं कि सत्यवती बहुत प्रसन्न हो गई कि उसको ऐसा पुत्र मिला, ऋषि प्रसाद मिल गया और उसका दुर्गंध निकल गया। आकर अपने पिता को सारी कहानी सुनाती है, वो उसको गुपित नहीं रखती है, उसको सारी कहानी अपने पिता को सुनाती है और उससे पिता उसके क्रोधित नहीं होते। ये पांच हजार साल नहीं, उसके पहले द्वापर के प्रारंभ में, मतलब उसके बाद काफी अगर एक कहानी हुई है, धर्म नाम का चीज था, लोग धर्म का पालन करते थे, गलत क्या है सही क्या है इसको जानते थे, इसको उन्होंने स्वीकार किया। वैसे ही जो पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म है ये और भी ज्यादा है, इसमें जो क्लिष्टता है और भी ज्यादा है। यहां हम कह सकते रहे व्यासदेव भगवान है, लेकिन पांडु और धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक सज्जन भी नहीं है, वो तो दुर्जन है, तो उसके बारे में क्या, ये तो इसकी कहानी ऐसी है कि जिस समय जो हस्तिनापुर के राज गद्दी पर राज्य करने के लिए सत्यवती भीष्मदेव को कहती है, क्योंकि चित्रांगदा महाराज पहले ही मारे जा चुके थे किसी गंधर्व के द्वारा, विचित्रवीर का विवाह हो गया अंबिका और अंबालिका के साथ और उन्होंने काफी भोग किया उनके साथ, दुर्भाग्यवश उनको कोई पुत्र नहीं हुए और क्षय रोग के कारण विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। सत्यवती बहुत दुखी हो गई और चिंतित हो गई कि अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि भीष्मदेव ने व्रत लिया था। व्रत क्या लिया था? कि मैं इस गद्दी पर विराजमान बैठूंगा नहीं और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए। तो सत्यवती कहते कि देखो आपने इसका धर्म का पालन किया है मेरे ही कारण, अब मैं चाहती हूं कि आप इस राजगद्दी पर बैठो और मेरे जो बहु है अंबालिका और अंबिका के गर्भ में ये पुत्र उत्पन्न करने के लिए समागम करो। अब माता अपने पुत्र को व्यभिचार करने के लिए कैसे कह सकती है, वो भी किसको? भीष्मदेव को। तो भीष्मदेव ने कहा यह संभव है कि मैंने जो व्रत लिया है ये व्रत हमेशा के लिए है, इस जन्म में शाश्वत रूप से मैंने व्रत लिया है, न तो मैं राज्य गद्दी पर बैठ सकता हूं, न तो मैं विचित्र वीर के पत्नियों को साथ पत्नियों के साथ समागम कर सकता हूं, यह संभव है। जो हिमालय पर्वत वो पिघल जाएंगे, नदियां सूख जाएगी, समुद्र सूख जाएगा, हवा आना बंद हो जाएगा, लेकिन जो भीष्म का व्रत है वो कभी नहीं टूटेगा। अगर माता आप कुछ राजगद्दी को कोई राजा प्राप्त करना चाहती हो तो मेरा मत यह है आपको क्या करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके द्वारा आपके जो बहू है उनके गर्भ में ये जो बीज है उसको इन्वेस्ट करना है ताकि उनको पुत्र हो जाए और वो राज्य कारोबार करे। तो भीष्मदेव भी अनैतिक संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, अपने माता को ऐसा बोल रहे हैं। तो सत्यवती कहती है वो इसको स्वीकार करती है, ऐसा नहीं कि उसको धक्का बैठ गया कि अरे भीष्मदेव इतना बड़ा ब्रह्मचर्य इतना बड़ा धार्मिक है तो ऐसा कैसे कह रहा है, ऐसे नहीं कहती हो। वो कहती है देखो भीष्मदेव मेरे पुत्र, आप जैसे मेरे पुत्र हो, अपनी कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाती है और कहते कि व्यासदेव जी मेरे पुत्र है, उन्होंने मुझे कहा था जब तू मेरा चिंतन करेगी मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और वो कहानी सुनाती है कि मैं व्यासदेव जी को बुलाकर उनके द्वारा अगर हमारे मेरे बहू के गर्भ में अगर वो पुत्र के लिए समागम करेंगे तो क्या आपके लिए आपको ये सहमत है? तो भीष्मदेव हाथ जोड़ते हाँ मुझे सहमत है, इसको स्वीकार करता हूं मैं। तो व्यासदेव जी आते हैं, ठीक है भीष्मदेव साधु नहीं है ऐसा सोच लो, सत्यवती एक स्त्री है इसलिए कह रही है। व्यासदेव जी आते व्यासदेव जी पूछते मां से, आपने मेरा चिंतन किया तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो व्यासदेव जी से सत्यवती कहते, देखो ये इमरजेंसी है, हमारे राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई राजा नहीं है, इसलिए विचित्र वीर की पत्नियां चाहती है पुत्र हो जाए, आप उनके साथ समागम करके हमें पुत्र प्राप्त करके दो। व्यासदेव जी तैयार हो जाते। कोई कह सकता है कि पाखंडता है कि बड़े बड़े धर्म की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ऐसे कैसे तैयार हो गए? केवल तैयार नहीं हुए बल्कि कर भी दिया। अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई, अंबिका के गर्भ से, बराबर ना, अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हो गया और विदुर का जन्म किसी दासी के द्वारा हो गया। तो व्यासदेव जी कैसे तैयार हो गए? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उस समय की जो संस्कृति है, उस समय का जो आचार है, विचार है, उसको जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तुरंत जज करना, रे ये गलत है। अगर किसी ने देखा कोई व्यक्ति जो शेंदी का जो झाड़ होता है उसके नीचे बैठकर अगर कुछ पी रहा हो, हम तुरंत जज करते रहे वो शराब पी रहा है, नहीं थका होकर पानी पीता होगा, आप कैसे जान दो कि वो शराब पी रहा है या नहीं? अगर हम देखते हैं कभी कभी लोग बियर बॉटल में, ऐसे जो शराब के बॉटल में पानी पीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो बॉटल में कुछ रखा है, ऐसे चीजों को शास्त्र में कहा है कि वो गंदा हो जाता है। लेकिन जो इसको जानते नहीं, अगर वो कहते कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, चलो ये बॉटल में पानी भी पीने के लिए रखेंगे, अगर पानी पी रहे हो तो उनके प्रति आरोप लगाना, देखो इन्होंने पहला शराब पिया था अभी उसको पानी पी रहे, ये गलत है। वहां की संस्कृति को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपद धर्म नामक एक धर्म होता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है, इसका हम दो तीन उदाहरण देंगे। जैसे अगर एक गुप्तहेर है, सीक्रेट एजेंट, वो अन्य देश में जाता है, भारत का गुप्तहेर अन्य देश में जाता है और सारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करते करते क्या हो गया, अचानक दुर्भाग्यवश वो शत्रुओं के सामने ही आ गया, वो जान गए, उसकी वो उसके खोज में थे, उसकी प्रतीक्षा में थे, उसको पकड़ना चाहते थे, उसको पकड़ने ही वाले हैं, वो समझ गया अभी मेरा अंत हो गया, अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन भेज दिया है। तो अपने बॉस को फोन करता है, वो कहता है कि देखो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो सारे इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हिंसा करेंगे, इसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मेरे गले में जो साइनाइड मैंने पिल्स रखा हुआ है वो अभी ले रहा हूं और मेरे प्राणों को छोड़ रहा हूं। ये आत्महत्या हो गया या ये त्याग हो गया? आत्महत्या हो गया, त्याग हो गया, क्या हो गया? यही है संदिग्ध। ये संदिग्ध क्या है? कोई कहेगा आत्महत्या, कोई कहेगा त्याग है। ऐसे धर्म में धर्म संकट आना ये स्वाभाविक होता है, ऐसे आता है। इसलिए धर्म शास्त्रकारों ने क्या किया है, ऐसे वातावरण में उसको आत्महत्या न कहते हुए क्या हो जाएगा, वो त्याग हो जाएगा। अगर अपने प्राणों को नहीं छोड़ेगा, जैसे भारत के एक स्वतंत्र सेनानी थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, आपने सुना होगा क्या? कीर्ति आजाद को केवल सुने हो, चंद्रशेखर आजाद को आज के बच्चों को पूछो जानते हो क्या? राजगुरु, सुखदेव, इसको नहीं जानेंगे, वो किसको जानेंगे? सब क्रिकेटर को जानेंगे। लाखों रुपए कमा लेते हो, देश के लिए नहीं देते, देश के लिए भी नहीं खेलते, क्लब के लिए खेलते। तो स्वतंत्र सेनानी, हम बच्चों को पूछते हैं बॉम्बे में क्विज, और पूछते राजगुरु कौन है? राजगुरु विश्वामित्र मुनि है, नहीं राजगुरु कोई थे स्वतंत्र सेनानी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, चंद्रशेखर आजाद जब वो पकड़े जाने वाले थे, उन्होंने सोचा नहीं, इनके द्वारा ने मैं मरना नहीं चाहता, उन्होंने अपने आप को गोली से मार लिया, या आत्महत्या हो गया या त्याग हो गया। कौन कहेगा आत्महत्या हो गया? ये धर्म संकट में डेफिनेशन बदल जाता है। वैसे अगर एक स्त्री को डॉक्टर कहते हैं गर्भवती है, उसके तीसरा पुत्र होने वाला है या तीसरा जो शिशु बाहर आने वाला है, फिर डॉक्टर कहते हैं उस माता को देखो आपके लिए अभी एक ही चॉइस है, दो चॉइस है। ये चॉइस ये है कि अगर आप जीवित रहना चाहती हो आपका बालक मर जाएगा, अगर आपका बालक जीवित रहेगा आप मर जाओगी। सोचो क्या करना है। अगर बालक को मारेगी तो अब क्या हो गया? वो क्या हो गया? डेफिनेशन सामान्य दृष्टिकोण से वो मर्डर हो गया। वो खुद मर जाएगी तो क्या हो गया? आत्महत्या हो गया। क्योंकि जीवित रहना हर एक जीव के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस हालत में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? अगर वो सोचे कि नहीं नहीं मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती हूं, मैं शिशु का मर्डर नहीं कर सकती हूं, मुझे क्या करना चाहिए? खुदकुशी करनी चाहिए। तो ऐसे होने से क्या होगा? जो बाकी के जो दो शिशु है उनका मर्डर हो जाएगा। कैसे? वो अनाथ हो जाएंगे। अनाथ होने के कारण उनको देखभाल करने वाले कोई नहीं होंगे। यानी कि जीवित रहते हुए उनको इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये जो चॉइस है, जो सिचुएशन है, ये बहुत संदिग्ध क्लिष्ट है। इसको पार करने के लिए एक दूसरा नियम लागू करना पड़ता है। ये हर एक के जीवन में, हर एक वातावरण में ऐसा आता है। और तीसरा, ये उत्तर मैं आपसे चाहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं, पता ना ऐसा हुआ है कि नहीं, जब तक हम सुनते थे ऐसा नहीं हुआ था। क्रिकेट सब लोग जानते हैं, क्रिकेट को अगर कोई बैट्समैन जो गेंद है उसको जोर से अपने बैट से मारता है और बॉल ऊपर से उड़ रहा है और ऊपर उड़ते 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 बाउंड्री लाइन पर आ जाती है गेंद, और जो फील्डर है वो कैच कर सकता है, परंतु क्या हो गया? बाउंड्री लाइन पर वो गेंद दो टुकड़े हो गए उसके। एक टुकड़ा बाउंड्री लाइन के अंदर फील्डर ने कैच किया और दूसरा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर सिक्सर पे चला गया। अब क्या करना चाहिए? उसको आउट देना चाहिए जिसने मारा है या उसको सिक्सर घोषित करना चाहिए? बताओ, हम पर आप बन जाओ। क्या होता है? ऐसा कभी होता है? नहीं, ब्रह्मचारी को पूछकर मालूम। इसका हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम? कोई है इधर एक्सपर्ट? क्या होता है ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? एक कुछ, अगर ऐसा पहले नहीं हुआ हो तो ठीक है, अगर ऐसा कल हो जाएगा तब क्या करना चाहिए अंपायर को? अगर अंपायर ने कह दिया नहीं सिक्स है तो ये बॉलर के प्रति अन्याय हो गया, अगर आउट बोल दिया तो बैट्समैन के प्रति अन्याय हो गया। यानी कि समाज में ऐसे धर्म संकट निश्चित रूप से बार बार आते हैं। तो इसलिए वातावरण को देखना चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने मनु संहिता में, मनु महाराज ने महाभारत में, व्यास देव जी ने शांति पर्व में, भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को बताते हुए, सातवें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये अपद धर्म नाम का जो धर्म है उसकी चर्चा करते हैं। ये अपद धर्म क्या है? जैसे उदाहरण के लिए वैष्णव भक्तों के बारे में कहा गया है, अगर मंदिर में एक पुजारी राजभोग की आरती कर रहा है, लैंप अर्पण किया है और अचानक कोई बाहर से पहली बार मंदिर में आए हुए हैं और कोई नहीं मंदिर में भक्त लोग, और वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, किससे मिलना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं है, तो पुजारी अल्टर पर भगवान को, भगवान की आरती कर रहा है तो संकट आ गया क्योंकि अतिथि आए हुए हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। अगर पुजारी आरती करता ही रहेगा और इन अतिथियों का देखभाल नहीं करेगा तो क्या हो गया? आरती करना अपराध हो गया। ये अपराध हो गया, परंतु हर रोज आरती करते करते बीच में गला मैं थोड़ा खा के आता हूं। बीच में आरती हर रोज छोड़ना गलत है, लेकिन जो इमरजेंसी में छोड़ना ये भूषण है, इमरजेंसी का सिचुएशन है। और एक उदाहरण शास्त्र में ऐसा आता है कि अगर कोई किसी ने भोग बनाए या गंगा से आप पानी लेकर आए हो और किसी गांव से गुजरकर आप आ रहे हो और आते लेते आते आते आपके हाथ में पानी है और कोई बालक उसको प्यास लगी है, तीव्र प्यास लगा हुआ है, आपने पानी अभिषेक के लिए लाया था और वो बालक आपसे पानी मांगता है, मुझे पानी दो, मुझे पानी पीने के लिए नहीं है, किधर भी पानी नहीं पीने के लिए। आपने कहा नहीं नहीं ये पानी तो भगवान के लिए, तू आ गए कहां का चांडाल, मेरे से पानी मांग रहा है, इसका भोग का तूने अपवित्र कर दिया, ये भगवान का शुद्ध भोग है, इसको मांगकर आपने क्या कर दिया, इस पानी को अशुद्ध बना दिया। अगर आप उसको डांटने के लिए जाते हो, आप अगर उसको पानी की व्यवस्था नहीं करते हो, आपने जो गंगा का पानी भगवान के लिए लेकर आया था वो खून बन जाएगा। अपध धर्म क्या है, तुरंत वो पानी उसको दे दो, भगवान के लिए फिर से आप लेकर आ सकते हो। लेकिन हर रोज जहां सारे सुविधाएं है और आप भगवान की सेवा छोड़कर समाज की सेवा करने के लिए चले जाते हो, फिर वो दूसरा अपराध हो गया। तो ऐसे अपध धर्म बार बार आते हैं, आते रहेंगे। तो इसीलिए धर्मशास्त्रकारों ने क्या किया है, जहां सत्यवती भीष्म को बोल रही थी, भीष्मदेव सत्यवती को बोल रहे थे, सत्यवती ने व्यासदेव जी को कहा, व्यासदेव जी तैयार हो गए, उन्होंने इन रानियों से समागम भी किया, इसमें कोई दोष नहीं है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसको कहते हैं नियोग पद्धति, ये शास्त्र में लिखा है। ये नियोग पद्धति क्या है, इसको बताया जाता है, विधवाया नियुक्तस्तु घृतक्तो व्याग्यतो निशि एकम उत्पादयो पुत्रम न द्वितीया कथांचन। वो कहते हैं अगर किसी के क्षेत्र में, क्षेत्र यानी कि गर्भ में जो विधवा है, उसके कोई पुत्र नहीं है, पति मरा हुआ है और उसके परिवार को देखभाल करने के लिए, एस्टेट को देखभाल करने के लिए, राज्य को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, अगर वो सीड चाहती है तो किसी ब्राह्मण को या देवर को बुलाकर उसके द्वारा संतान उत्पत्ति इमरजेंसी के लिए कर सकती है, वो अनैतिक नहीं है। और किस प्रकार से करना है, व्यासदेव जी कहते हैं सत्यवती को, उनको एक साल के लिए तपस्या कराओ, अगर मैं उनसे समागम करूं तो एक साल के तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शक्ति को सहन करना उनके लिए मुश्किल है, असंभव है, सहन नहीं कर पाएंगे। सत्यवती के लिए इतना समय नहीं है, तुरंत होना चाहिए। इसलिए जब व्यास महर्षि जाते हैं पहले रानी के पास, उनका तेज, वो तेज ऐसा लग रहा था कि वो दिखने में सुंदर नहीं थे। और ये रानियां, पहली रानी सोच रही थी कोई भीष्म और कोई कुरुकुल के महान कोई आएंगे, ये इनसे गलती हो गई। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम कह रहे कि कोई दोष नहीं, इनके हाथ से वो गलती हो गई उस रानी के द्वारा, क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है, ये भी एक विज्ञान है, अगर पुरुष अधम है, पुरुष अधम है, पुरुष पापी है, परंतु उसकी पत्नी शुद्ध है, पुरुष अधम होने पर भी स्त्री शुद्ध होने के कारण उसके गर्भ से जो पुत्र निकलेगा वो शुद्ध रहता है, क्योंकि स्त्री एक फिल्टर के समान है, उसके अंदर शक्ति शुद्ध करने के लिए। इसलिए जब कहा जाता है कि नहीं स्त्री शुद्ध रहना चाहिए, उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, स्वतंत्रता न देने का अर्थ क्या है, उसके पवित्रता को रखो। अगर स्त्री अशुद्ध बन जाते, पुरुष शुद्ध है स्त्री अशुद्ध है, तो उसके गर्भ से जो बालक निकलेगा वो क्या होगा, वो बहुत उसमें दोष निकलेंगे। इसलिए हम देखते हैं धृतराष्ट्र की माता जो थी, जैसे व्यासदेव जी आ गए वो डर गई और उसकी अपेक्षा भंग हो गई। अपेक्षा भंग होने के नाते वो पुण्यात्मा थी, पुण्यशाली थी, फिर भी अपेक्षा भंग होने के कारण उसके आंखें बंद हो गई। तो उसके गर्भ में जो बालक निकला धृतराष्ट्र अंधा रह गया। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र निष्पापी है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अंबिका ने क्या किया, ऐसे आत्मा को अपने प्रति आकर्षित किया। दोष केवल माता का नहीं है, ये जीव का पहले से कुछ दोष था, वो गर्भ देख रहा था, ऐसा कोई दोषी गर्भ है उसमें मुझे भगवान प्रवेश करा देंगे। शी हैज हर ओन फॉल्ट। कभी कभी बच्चे लोग माता पिता को दोष देते, अरे मेरे माता पिता ऐसे निकले, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरी माता ऐसी थी। नहीं, उनका स्वतंत्र कर्म है और तुम्हारा स्वतंत्र कर्म है, इनका दोष नहीं है। उनका दोष खुद भोग लेंगे उसको, लेकिन तुम भी ऐसे पाप किए हुए थे इसलिए ऐसे गर्भ में आपको आना पड़ा। ये कोई धृतराष्ट्र कोई निष्पापी नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। तो वैसे ही आत्मा वहां आ गई। हाँ, क्योंकि मां का स्वभाव, अगर मां ऐसा नहीं करती, ऐसे नहीं कि धृतराष्ट्र अच्छा बनकर आते, उनको किधर दूसरे योनि में जाना पड़ता था, ये जाना चाहिए। इसलिए कोई अपने माता पिता को दोष देते, आपको या मुझे ऐसे माता पिता मिले क्योंकि मेरे भी संस्कार ऐसे ही थे। अगर कोई माता पिता गरीब है, उनके घर में कोई गरीब पुत्र पैदा होता है, वो कहता है देख तुम्हारे कारण मैं भी गरीब रह गया। ने तेरा भी कर्म ऐसा ही था, गरीबी जन्म घर में जन्म लेना था। एवरीबडी अदर इंडिपेंडेंट कर्म, ये जानना चाहिए। इसलिए हमें धृतराष्ट्र के प्रति अनुकंपा नहीं दिखानी चाहिए। तो व्यासदेव जी बाहर आए, सत्यवती ने पूछा क्या होगा। देखो धृतराष्ट्र के बारे में पहले से कहते सत्यवती को व्यासदेव जी, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू ने गलती कर दी। शक्तिशाली होगा, राजनीति को जानेगा, लेकिन अंधा रहेगा। ओ अंधे को राज्य कैसे मिलेगा, यह संभव नहीं है। देखो सत्यवती कहते कि अंधा राजा नहीं बन सकता, ये विदुर ने नहीं किया था, पहले से नियम था कि ऐसा राजा नहीं बन सकता। तो सत्यवती ने कहा दूसरे बहु के पास गर्भ आप रख दो। तो व्यासदेव जी चले गए, इसने आंखें बंद नहीं की, डर गई, उसका शरीर विवर्ण हो गया, पांडु रंग का हो गया। तो इसके लिए पांडु का जन्म हो गया। देखो संस्कार कितने शक्तिशाली है। आजकल ऐसे बच्चे आते हैं, हाल ही में कोई कह रहा था 2 साल का लड़का अमेरिका में जन्म लिया है, वो अगर धूम्रपान करने उसको नहीं मिलेगा तो जोर जोर से आवाज करता है, रोने लगता है कि मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, बोल भी नहीं सकता। जब मां उसके मुख में सिगरेट रखती है फिर वो प्रसन्न हो जाता है। देखो क्या संस्कार है, ये मां के संस्कार है। 2 साल का लड़का, उसको सिगरेट चाहिए। 2 साल के बच्चे वायलेंट वीडियो गेम्स देखते हैं, वायलेंट वीडियो देखते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। यहां कभी कभी हम लोग बच्चे लोग छोटे नरसिंह लीला को भी करो तो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को डरना ये स्वाभाविक है, होना चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वो डरेंगे नहीं तो किसी गलत चीज में हाथ डालेंगे, किसी ये कर देंगे, उनको डरना चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो धृतराष्ट्र का ऐसा जन्म हो गया, पांडु का ऐसा जन्म हो गया। फिर से वह सत्यवती ने पूछा, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। और तीसरा विदुर, जब फिर से सत्यवती ने उसको मनाया, जो धृतराष्ट्र की जो माता थी उसको मनाया, उन्होंने हां कह दिया अपने सास के सामने, लेकिन उसने धोखा दिया, उसने एक दासी को भेज दिया, जा तुम समागम करो उनके साथ, मैं नहीं करूंगी। और दासी व्यासदेव के बारे में जानती थी, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती है, उसकी चेतना शुद्ध थी, उसकी चेतना सेवामही थी, उसको जानकारी थी कि व्यासदेव महान है, साधारण नहीं है। इसके कारण उन्होंने क्या किया, ऐसे आत्मा को आकर्षित कर लिया। वो स्वयं धर्म के मूर्तिमान थे, स्वयं यमराज थे, उनको कुछ विराम चाहिए था, रेस्ट चाहिए था उस काम से, यमराज के काम से। कृष्ण की लीला में भाग लेना चाहते थे, इसलिए विदुर जी वहां प्रकट हो गए। तो विदुर जी दासी पुत्र होने पर भी इन दोनों से, पांडु से और धृतराष्ट्र महान बन गए। तो जाति कहां है इधर? वेरी द क्वेश्चन ऑफ कास्ट। और व्यास देव जी ने उस दासी को कहा, तुमसे मैं प्रसन्न हूं, तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। और आकर वो सत्यवती को कहते हैं कि देख, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा और तुम्हारे इस बहुओं ने, पहले बहू ने मेरे प्रति ऐसा धोखा कर दिया। और व्यासदेव जी चले गए। तो यहां क्या कहा है मनु संहिता में कि जब ऐसा पुत्र प्राप्त करना हो तो उस समय जो पुरुष उसके द्वारा गर्भ में जो भी रखना जाता है उसका पूरा शरीर घी से व्याप्त होना चाहिए। घृतत्तो व्याघ्यतो निशी। और किस समय? रात के समय, मध्य रात्र में जाना चाहिए। और वो समागम होने के बाद जब वो निकल जाता है फिर से उसको देखना नहीं चाहिए। एक बार कर सकते हैं, दूसरे बार नहीं। फिर अगले श्लोक में लिखा हुआ है दूसरे बार करना चाहिए क्योंकि एक पुत्र यानी कि पुत्र न होने के समान है, कुछ भी हो सकता है उसको, इसलिए दूसरा पुत्र भी होना चाहिए। इसलिए दूसरे बार भी कर सकते हो, लेकिन वो करने के बाद इन दोनों का संबंध क्या है? इन दोनों का संबंध यह है कि वो उसकी पुत्र वधु बन जाती है, उसको अपने पुत्र के पत्नी के समान देखना चाहिए या गुरु पत्नी के रूप में देखना चाहिए। अगर वो गलत करेंगे, फिर से कुछ ऐसा पाप करेंगे, ये बार केवल भोग करने के लिए चले जाएंगे, तो सबसे बड़ा पाप लग जाता है। तुरंत शास्त्रकारों ने इमरजेंसी बनाया है, थोड़े समय के लिए फिर से नियम लागू कर दिया है। अब पढ़ सकते हो मनु संहिता में, ये नियोग पद्धति है, एक कम समय के लिए था। और धर्म डायनामिक होने के कारण ये धर्म, ये सिद्धांत, ये नियोग पद्धति कलयुग के लिए लागू नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड पुराण में इसको श्री चैतन्य महापुरुष ने चांद काजी के सामने प्रस्तुत किया था। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयत। साफ साफ है, धर्म के नियम बदलते रहते हैं समय के अनुसार, काल के अनुसार बदलना चाहिए। ये ऋषि लोगों का कर्तव्य है, ऋषि लोग बदलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के इंद्रिय कलयुग में नियंत्रित न होने के कारण ऐसा अगर करने के लिए भी जाएंगे, वहां काम की भावना ज्यादा होने के कारण तब क्या होगा? एक वर्ण संकर शिशु जन्म लेगा या जन्म लेगी। इसलिए देवरोण सुतोत्पत्ति, देवर से जो विधवा है अपने भाई के पत्नी से पुत्र को उत्पन्न करना, ये शास्त्रकारों ने पूर्णतया निर्बंध कर दिया है। जो गाय का यज्ञ, जो कई लोग लिखते आ रहे तुम्हारे धर्मशास्त्र में, तुम लोग क्या बात करते हो कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंदू लोग महाभारत में सब लिखा है, ब्राह्मण लोग खाते थे, क्षत्रिय लोग खाते थे, भगवान राम ने भी खाया, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में है। अगर वातापी इलवल की कहानी सुनोगे उसमें आता है, लेकिन यहां वो क्या लिखा है, वो लिखने का ऐसे नहीं कि लोग होटल में जाके फाइव स्टार में खाते थे, उनके अंदर शक्ति थी उस जानवर को यज्ञ में अर्पण करने से, वो मांस नहीं रहता था, एक्सटर्नली मांस है लेकिन वो हविष्य बन जाता था। उसको प्रसाद के रूप में ब्राह्मण लोग भी ग्रहण करते थे, ये हम इसको नकारते नहीं है, लेकिन इसको गलत प्रकार से उल्लेख करना, वो झाकिर नाई करके कोई है वो उल्लेख करता है इसको। देखो, हिंदूज आर नॉट वेजिटेरियंस एंड स्पेशली नॉट इन रिगार्ड्स टू काउ, इसलिए हमारा धर्म पहले से श्रेष्ठ है, हम गाय की हत्या करते हैं। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, न तो कुरान में ऐसा है न तो भागवतम में या महाभारत में ऐसा है। ये हविष्य है, ये कोई मांस ऐसा ही नहीं है, हर चीज को अर्पण के बुद्धि से देखना है। तो गाय को अर्पण करना है और घोड़े को अर्पण करना है, उसका जो मांस है, जो मांस नहीं रह जाता वो प्रसाद के रूप में इट इज नो मोर मीट, इसको जाना चाहिए, उसको स्वीकार कर सकते थे, लेकिन कलयुग में क्या कर दिया, न तो आप यज्ञ कर सकते हो, फिर खाने की बात दूर रहेगी, अगर यज्ञ ही नहीं है तो कैसे खाओगे, न तो घोड़ा न तो गाय, दूध गाय का दूध पी सकते हो कलयुग में, यहां बॉम्बे में और पुणे में गाय का दूध भी पीना बहुत कठिन है क्योंकि उसमें यूरिया डालते हैं, इसमें हार्मोन्स दे देकर ऐसे इंजेक्शन देकर वो गाय का दूध दूध नहीं है, वो क्या बन गया है, विष बन गया है। तो संन्यासम पल पैतृकम, ये सब जो है हमारे शास्त्रकारों ने क्या कर दिया, इसको मना कर दिया। फिर संन्यास क्यों लेते, दो प्रकार के नियम होते हैं, अगर हायर प्रिंसिपल आप पालन कर सकते हो उसको करो, उसे पाप नहीं लगेगा। संन्यास लेना ये इंद्रिय भोग नहीं है, लेकिन देवर से सुत उत्पत्ति करना ये इंद्रिय भोग में परिवर्तित हो सकता है। गाय की हत्या इंद्रिय भोग हो सकती है, घोड़े की हत्या इंद्रिय भोग हो सकता है, परंतु जो संन्यास लेना, हमारे आचार्य रामानुज, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है, शास्त्रों का वचन का उल्लंघन किया है, लेकिन ये शास्त्र का वचन उल्लंघन करना ये अनुकूल है, इसे और सेवा ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहां ये महत्वपूर्ण है। फिर ऐसा क्यों नहीं किया सत्यवती ने कि किसी पुत्र को दत्तक लेकर वो राजा बना सकती थी, क्यों अपने ही घर पे राज्य गद्दी रखना चाहिए, ये क्या उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनका ही पुत्र क्यों बनना चाहिए, डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए ऐसा। आज जो चल रहा है, जिसका हम प्रश्न कर रहे हैं कि उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या, हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा किसका रूल हो गया, एक ही परिवार का हो गया, बराबर है कि नहीं। आप हस्तिनापुर के राज्य गद्दी के बारे में आक्षेपण करते हो, लेकिन यहां वही चल रहा है, योग्यता न होने पर भी। तो यहां इसलिए कहा गया कि सामाजिक दृष्टिकोण, जो समाज का जो वातावरण था इतना रिजिड था कि एक परिवार में ऐसे आत्मा को आह्वान करते थे, ऐसे सोल को आह्वान करते थे, ऐसे सोल को आकर्षित करते थे। अगर आप कुरु वंश का वंशावली देखोगे तो इतने महान महान राजा बन गए, भरत, प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं, दुष्यंत महाराज का पुत्र जो भरत है उसके नाम से भारत देश जाना जाता है, और जो भरत महाराज जो ऋषभ के पुत्र है उसके नाम से भी माना जाता है, इतने बड़े महाराज। नहुष चक्रवर्ती, कुरु महाराज, हस्ति चक्रवर्ती जिसके नाम से हस्तिनापुर हुआ है, भीष्मदेव, शांतनु, बाहल्लिका, इतने महान महान राजाओं का वंश है। तो उस वंश की स्त्रियां है, उस प्रकार से संस्कार के द्वारा उनका विवाह किया हुआ है, वो जो क्षेत्र है, क्षेत्र महत्वपूर्ण है या बीज महत्वपूर्ण है? अगर आपके पास बहुत ही अच्छा बीज है, चावल, सोचो कि इंडियन क्या बोलते उसको, एक ऑर्गेनिक चावल है, बहुत स्पेशल है, उस चावल दाना आपके खेती में नहीं हो रहा है, आप कहां गुजरात से लेकर आते हो और उसको यहां डालते हो, फिर वो चावल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर क्षेत्र फर्टाइल नहीं है, सुपीक नहीं है, तो क्या होगा, चावल मर जाएगा। अगर बहुत ही अच्छा जो बासमती चावल लेकर आप रेगिस्तान में बोने का प्रयास करोगे तब क्या होगा, वो नहीं आएगा। इसलिए क्षेत्र महत्वपूर्ण है, मनु संहिता में कहा है, क्योंकि इनका क्षेत्र कुरु वंशों का क्षेत्र था, ऐसी परंपरा थी, अधिकृत परंपरा होने के कारण उसी क्षेत्र में बाहर से भी लेकर आओ, उसको बोने से क्या होगा, वो क्षेत्र का प्रभाव से वो जो बीज है वो बहुत ही शक्तिशाली बनेगा। वो शक्तिशाली बन गए, पांडु महाराज धार्मिक थे और धार्मिक होने के कारण ही उनके द्वारा 5 ऐसे पुत्र निकले जो इतिहास में अमर बन गए, आज भी उनकी हम चिंतन, आज भी उनका हम चिंतन करते हैं। इसलिए इस प्रकार से आपद धर्म है उसका पालन किया पांडव कुरु वंशियों ने, सत्यवती ने, भीष्मदेव ने उसको सम्मति दी, व्यासदेव ने उसको सम्मति दी, परंतु दुर्भाग्यवश जो प्राणियां थी उनके हाथ से गलती होने के कारण एक विचित्र ऐसा आत्मा आ गया जिसका नाम था धृतराष्ट्र। धृत यानी कि धरना, पकड़ना, राष्ट्र यानी कि वो राज्य प्राप्त करने के लिए उसकी जो इच्छा थी, फिर वो एक गलत परंपरा का एक आरंभ हो गया धृतराष्ट्र के द्वारा कुरु। परंतु सौभाग्यवश भीम ने क्या कर दिया, सर्जरी कर दी, वो परंपरा को पूर्णतया बंद कर दिया और पांडवों का परंपरा को जारी रखा। एक कुरु वंश की महानता, ये कोई केवल दोनों भाइयों का झगड़ा नहीं है जो खेती में होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। ये जो शुद्ध जो कुल है उसको बचाने के लिए जो देश की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, इसकी चर्चा है। यहां हम कथा को विश्राम करते हैं और दोपहर के समय 4 बजे जो कुंती एक जो भाग ले लेंगे, कुंती क्या कर्ण को त्यागने में अपराध नहीं किया, क्रूरता का दर्शन नहीं किया, और कुंती ने कभी भी ये समाचार अपने पुत्र को बताया नहीं, केवल युद्ध के समय उसको दुर्बल बनाने के लिए जो चाल रचाया कृष्ण के द्वारा, जो कपट नाटक का सूत्रधारी कृष्ण, इन्होंने कुंती को भेजा जाओ कर्ण को दुर्बल बना, और कर्ण दुर्बल बन गया और इसीलिए युद्ध में वो परास्त हो गए, और इसका सारा उत्तरदायित्व किसका है, कुंती का है क्या, इसकी चर्चा हम दोपहर को करेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।